رمضان کے مہینے میں جو اعمال کیے جاتے ہیں ان میں سے ایک عمل تراویح ہے. قیام اللیل یا تراویح جو ہم رات کو عشاء کی نماز کے ساتھ کرتے ہیں, اب ہم اس کی اصل دیکھیں گے کہ وہ کیا ہے اسپرچولی. یعنی عشاء کی نماز کے بعد جماعت کے ساتھ کچھ اور نمازیں ادا کرنا. تراویح دراصل تہجد ہے. عام لوگوں کی سہولت کی بنا پر اس کا وقت کچھ پہلے مقرر کر دیا گیا ہے, کیونکہ عام طور پہ تو یہ فجر سے قریب کا وقت ہوتا ہے نا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر سے پہلے پڑھتے تھے نفل. لیکن چونکہ وہ وقت کھانے پینے کے, غسل کرنے کے, اپنے آپ کو پاک صاف کرنے کے ہیں, کیونکہ اب آپ نے روزہ رکھنا ہے, تو پھر وہ وقت پہلے سے کر دیا گیا کہ آپ رات کو اس کو ادا کر لیں. کتنا پیارا ہے نا ہمارا دین, کتنی سہولتیں دیتا ہے. آپ اس ساری چیزوں کو سنتے وقت اللہ تعالیٰ سے اپنے آپ کو مزید قریب محسوس کرتے ہیں؟ کیسا دین دیا. جبر والا دین ہوتا نا, کہتا خبردار نہیں, پہلے تم نفل پڑھو پھر کھانا کھانا, کھانے کا ٹائم نہیں بچتا, نہ بچے پہلے تم نفل کرو پڑھو, چلو پہلے غسل کرو پھر کھانا. نہیں, کتنا پیار کرتا ہے ہمارا رب کہ آپ کو اللہ تعالیٰ کا رحم اور اس کا الودود ہونا اور اس کی محبت نہیں محسوس ہو رہی ان چیزوں سے. تہجد کو قرآن میں نافلہ کہا گیا, سورہ بنی اسرائیل کی آیت 79 میں ہے. اور نافلہ کے معنی زائد یا مزید کے ہوتے ہیں, جس کو ہم نفل کہتے ہیں. گویا تہجد یا تراویح عبادت مزید ہے, یعنی مور دین عبادت, ایکسٹرا ورشپ ہے. جب کوئی شخص کسی کے بارے میں بہت اعلیٰ جذبات پا رہا ہو تو وہ اس کے لیے ضروری فرائض سے زیادہ کچھ کرنا چاہتا ہے. بندے کے اندر یہی احساس اپنے رب کے بارے میں اور بھی زیادہ شدت کے ساتھ ہوتا ہے. وہ چاہتا ہے کہ مقررہ عبادت کے ساتھ کچھ مزید عبادت کرے. کیا بات سمجھ آئی؟ تراویح, تہجد, یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے ایک زائد عبادت ہے. میں عبادت کو گفٹ سے موصوم کرتی ہوں. بس آپ دیکھیے کہ آپ کسی کو ملنے جاتے ہیں, آپ سب گھر والے ایک گفٹ دے دیتے ہیں, کام چل جاتا ہے نا. سارے فیملی کی طرف سے ایک گفٹ تھا. کہیں آپ کا تعلق زیادہ ہوتا ہے تو آپ کہتے ہیں نہیں میں اپنا الگ بھی دوں گی. کبھی آپ کا دل چاہتا ہے آپ کہتے ہیں نہیں یہ تھوڑا ہے میں زیادہ دوں گی. نفیلی باتیں اصل میں گفٹس ہیں. فرائض تو ہم اس لیے کرتے ہیں کہ نہ کیے تو پکڑے جائیں گے, اسلام پہ حلل آئے گا جہنم کے عذاب سے ڈرتے ہوئے, یا جنت کی طلب میں. اچھی بات ہے, وہ بھی بہت ضروری ہے, لیکن نوافل پڑھنا ایسے لگتا ہے جیسے بندہ رب کو یہ کہہ دیتا ہے کہ اللہ میں اپنی خوشی سے بھی کچھ کر سکتا ہوں. ایک وہ جگہ ہوتی ہے جہاں آپ مجبوراً خرچ کرتے ہیں, مجبوری یہ کرنا ہی کرنا ہے, نہ کیا تو بری بات ہوگی. اور ایک ایسی جگہ ہوتی ہے جہاں آپ اس لیے کرتے ہیں کہ ضرورت نہیں تھی, لیکن آپ اپنے دل کے جذبوں کے اظہار کے لیے کرتے ہیں. فرق ہوتا ہے نا. ایک وہ ہوتا ہے جو ہمارے یہاں شادیوں میں لوگ ایک دوسرے کو دیتے ہیں خاندانی بنیاد پہ, گن گن کے, اس نے 100 دیا تھا تو میں 101 دے دوں, اس نے 50 دیا تھا تو میں 51 دے دوں. ہاں, وہ تو مجبوری ہے. لیکن آپ کہیں ایسی جگہ کسی کو تحفہ دیں جہاں کوئی ایکسپیکٹ بھی نہ کر رہا ہو, تو وہ چیز آپ کے دل کے جذبوں کا بہترین اظہار ہوتا ہے. تو نوافل کا کثرت سے پڑھنا اللہ تعالیٰ کے لیے دل میں محبت کا ہونا ہے. ٹھیک ہے, اس کے لیے کوئی لگا لپٹا اصول نہیں بنا لینا چاہیے. ہم بعض دفعہ نوافل پہ اتنا جھگڑتے ہیں کہ فرائض پیچھے رہ جاتے ہیں. تو اب تراویح پڑھتے ہوئے آپ نے کیا فیلنگز رکھنی ہے اپنی, اس لسٹ میں نوٹ کیجئے کہ میں اللہ کو گفٹ دے رہی ہوں, تحفہ دے رہی ہوں, کیا اس قابل ہے کہ اس کو دے سکوں. ٹھیک ہے, تو فیلنگز کے ساتھ پڑھیے. اور ظاہر ہے طریقہ تو سنت ہی کا ہوگا, اپنی مرضی سے نہیں کریں گے, لیکن دل کے جذبات بھی شامل کریں گے, بوجھ نہیں سمجھیں گے. اہل ایمان کے اوپر 5 وقت کی نماز فرض کی گئی ہے, مگر ایک سچا مومن عین اپنے فطری تقاضے کے تحت چاہتا ہے کہ وہ اپنے رب کی کچھ اور بھی عبادت کرے. اسی عبادت مزید کی ایک شکل تہجد ہے. رات کی اس نماز کو جب مؤخر کر کے پڑھا جائے, مؤخر مین پوسٹ پون کر کے, ڈیلے کر کے, تو اس کو تہجد کہتے ہیں. اور رات کی اس نماز کو جب مقدم کر کے پڑھیں, مقدم کیا, وقت سے پہلے, تو اسی کا نام تراویح ہے. اس لائن کو ہائی لائٹ کر لیں. بہت سارے لوگ آپ سے سوال ایسے پوچھتے رہتے ہیں جس سے آپ خود بھی پریشان ہوتے ہیں کہ رمضان میں تہجد پڑھیں کہ نہ پڑھیں, क्या करें। बाज़ लोग सारा साल तहज्जुद नहीं पढ़ते, रमज़ान में तरावीह भी पढ़ लेते हैं और तहज्जुद भी पढ़ते हैं। तो तहज्जुद असल में तरावीह ही की शक्ल में वक्त से पहले पढ़ ली जाती है। तरावीह के ज़रिए गोया इज्तमाई नज़्म के तहत मुसलमानों को ये सबक दिया जाता है कि तुमको इबादत मफरूज़ा यानी फ़र्ज़ इबादत ऑब्लिगेटरी वर्शिप जो है, इसके साथ इबादत मजीद भी अदा करना है। जिस आदमी के अंदर अपने रब के लिए इबादत मजीद का जज्बा ना पाया जाए, इसको गोया अभी तक इबादत इलाही का जायका नहीं मिला। आप अपने बारे में क्या कहेंगी? क्या सिर्फ फ़राइज़ पटके हुए हैं या कुछ नवाफिल और सुन्नतें भी? अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह हमें नफलों की रग़बत डाल, नफल का शौक़ दे दे। हम अपनी ख़ुशी से भी तो कुछ करें। कल क़्यामत के दिन ये ना कह दें कि बस मारी बांधी नमाजें हैं। ठीक है, फ़राइज़ पढ़ने से साकित तो हो जाता है इंसान पे, फ़र्ज साकित हो गया यानी फ़र्ज़ अदा किया तो ठीक है, गुनाह नहीं है अब। लेकिन कुछ अपनी ख़ुशी से तो भी करें। तो अल्लाह तो हमें नवाफिल का आदी कर दे, सुन्नतों का आदी कर दे। छोटी छोटी नफिल बातें क्या करें, हर वक्त बावजूर है। जब मौका मिले दो नफिल पढ़ लिए, जब मौका मिले कुरान की एक आयत पढ़ ली, जब मौका मिले जिक्र में ज़ुबान हिला दी। इससे आप अपने अंदर रूहानियत पाएंगे। जब हम हर वक्त इन चीज़ों से गाफिल और दुनिया ही की चीज़ों को सोचते रहते हैं तो फिर नतीजा वही निकलता है कि फ़र्ज़ इबादत में भी दिल नहीं लगता। अब कुछ बात होगी लैलतुल कदर के बारे में। रमज़ान की खसूसियात में से एक खसूसियत है कि इस महीने में लैलतुल कदर यानी शब कदर होती है। लैलतुल कदर के मानी है फ़ैसले की रात। साल में एक ख़ास रात है जिसमें अल्लाह ताला के सालाना फ़ैसले किए जाते हैं। ये रात रमज़ान के आखिरी अशरे में आती है। इस रात की इतनी अहमियत है कि इसको हज़ार महीनों से बेहतर बताया गया। गालबन इस रात को बहुत ज़्यादा फरिश्ते उतरते हैं, यहाँ तक कि ज़मीन पर फरिश्तों की कसरत हो जाती है। इसी बिना यानी बुनियाद बेस पर इस रात को ज़मीन पर मखसूस रूहानी माहौल पैदा हो जाता है। जिन लोगों के अंदर रूहानी तासीर पजीरी का मादा हो यानी स्पिरिचुअल एब्जॉर्बनेस हो, वो इससे मुतासर होते हैं। इस तासुर की बिना पर इनके कॉल और फेल में गैर मामूली रब्बानी कैफियत पैदा हो जाती हैं और इस इजाफा शुदा कैफियत की बिना पर इस रात में इनके अमल की कदर कीमत बढ़ जाती है। यानी जो लोग अपने अंदर स्पिरिचुअलिटी फील करते हैं ना, वो इस रात में आम मामूल से ज़्यादा इबादत करते हैं, और वो जब ज़्यादा इबादत करते हैं तो अल्लाह ताला उनकी कदर भी ज़्यादा करता है। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, अगर मैं लैलतुल कद्र को पाऊँ तो मैं किस तरह दुआ करूँ? आपने फ़रमाया कि इस तरह कहो, अल्लाहुम्मा इन्नक अफुवन तुहिब्बुल अफ़वा फ़ाफु अन्नी। ए अल्लाह, तू माफ़ करने वाला है। ये अल्लाह ताला का नाम है अल अफ़ु, और माफ़ी को पसंद करता है, तो मुझे भी माफ़ फरमा। आमीन। इससे अंदाज़ा होता है कि अल्लाह ताला से मांगने की सबसे बड़ी चीज़ क्या है? मुआफ़ी है। मुआफ़ी वो चीज़ है जो आदमी के लिए सबसे बड़ी सआदत का दरवाज़ा खोलती है। वो आदमी को अबदी जन्नत में पहुंचाने वाली है। फिर सबसे बेहतर वक्त में सबसे बेहतर मांगने की चीज़ मुआफ़ी के सिवा और क्या हो सकती है? हमें मौका मिले ना कि एक चीज़ मांग लो तो कहेंगे अल्लाह डायमंड का सेट मिल जाए, लैंड क्रूज़र मिल जाए, एक बड़ा सा घर मिल जाए। और हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के नाते से देखें तो औलाद की नेमत से महरूम थी। अल्लाह के नबी सल्लम ने ये क्यों नहीं कहा कि बेटा मांग लो, बेटी मांग लो, कई कई दिन चूल्हा नहीं चलता, कुछ खाना मांग लो? इसलिए कि जब इंसान को फ़िक्र लगती है ना अपनी, तो उसके लिए सबसे बड़ी चीज़ यह है कि रब्बे ग़फ़िर ली, अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, मेरे गुनाहों को माफ़ कर दे। तो लैलतुल कद्र की कदर करनी है। फरिश्तों के ज़्यादा उतरने से ये रात तंगी का सामान पैदा करती है, इसलिए भी इसको कद्र कहते हैं। इसी तरह इस रात किस्मतों के फ़ैसले होते हैं, इसलिए भी इसको लैलतुल कद्र कहते हैं। पूरे साल में जो मामलात होते हैं वो इसी रात में निपट जाते हैं। और इस रात वाकई इंसान अपने अंदर एक तब्दीली महसूस करता है। बाज़ दफ़ा इसकी निशानियां भी दिखती हैं, बस वो रात ठंडी होती है। कुत्ते जानवर जो ऐसे हैं जो भौंकते हैं वो भौंकेंगे नहीं, फिर जब अगले दिन सूरज निकलता है तो उसमें शुआई नहीं होती, क्योंकि उस रात फिर इतने फरिश्ते उतर चुके होते हैं कि आज सूरज के बीच में आ जाते हैं। और आप अपने दिल की कैफियत से भी चेक कर सकते हैं, लेकिन जितना मुमकिन हो इस रात इबादत की जा सकती है। इंशाल्लाह इस मौजू पे अलग से बात करेंगे। रमज़ान के महीने का एक इबादती अमल वो है जिसको इतिकाफ कहा जाता है। आप देख रहे हैं कि शुरू से लेके नियत से लेके आहिस्ता आहिस्ता हम स्टेप्स में अब इतिकाफ तक पहुंच गए, तो देखते हैं कि इसकी असल क्या है। महीने के आखिर में 10 दिन या इससे कम या ज़्यादा मुद्दत के लिए मस्जिद में बैठना, यह है इतिकाफ की तारीफ। ये इतिकाफ रमज़ान के आम आमाल से अलग कोई चीज़ नहीं है, ये रमज़ान के आम आमाल ही की ज़्यादा फोकस्ड फॉर्म है। मुर्तकिस फॉर्म क्या है? फोकस्ड होके करना। यानी ये सारी इबादत आप रमज़ान में वैसे भी करते थे, कोई अलग दुआ नहीं है इतिकाफ में बैठने की, कोई अलग एक्शन नहीं है, कोई अलग नफिल नहीं है, बस आप वैसे दुनिया के कामों के साथ साथ ये काम कर रहे थे। अब आप कह रहे हैं अल्लाह कुछ दिन फोकस्ड हूँ, अपना सेलफोन तो बंद करूँगी, अब अपने घर की सारी वो चीज़ें जो मेरी तवज्जो लेती हैं उसको हटा के एक अलग तेरे घर में आके बैठ जाऊंगी, ताकि मैं तेरे साथ ज़्यादा ताल्लुक़ महसूस करूं। हनीफ़ बनने की एक ख्वाहिश है, एक प्रैक्टिस करता है इंसान कि अल्लाह के लिए कुछ छोड़ना पड़े तो छोड़ सकती हूं कि नहीं। रमज़ान के दिन और रात में एक रोज़ेदार जो कुछ करता है इसी को मज़ीद यकसुई यानी फोकस होते हुए और एहतमाम के साथ करने के लिए अपने वो अपने माहौल से अलग होकर चंद दिनों के लिए मस्जिद में बैठ जाता है, यानी पूरे प्रोटोकॉल के साथ इंसान इतिकाफ करता है। इतिकाफ के दौरान आदमी कुरान पढ़ता है, वो नफिल नमाज़ें अदा करता है, वो अल्लाह की याद करता है, वो ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह की तरफ मुतवज्जे रहता है। इन मशगूलियतों का नतीजा ये होता है, यानी इस तरह बिज़ी रहने का नतीजा क्या है, इसका रिज़ल्ट क्या है कि इसके रोज़ों में मज़ीद ज़िंदगी पैदा हो जाती है। जब वो इतिकाफ़ से निकलता है तो एक नई रब्बानी शख्सियत लेकर निकलता है। रब्बानी शख्सियत कौन सी होती है? कि जिसको देख के रब याद आ जाए, ऐसा बंदा कि जिसको देखो तो रब याद आ जाए, जिसके मामूलात, जिसका अखलाक, जिसके कॉल, जिसके फेल रब की पसंद के हों। ऐसी शख्सियत जिसके असरात महीनों तक भी ख़त्म ना हों, क्योंकि अमूमन तो रोज़े का असर ईद के दिन ही ख़त्म हो जाता है ना, चांद रात और ईद की पार्टियों में, हाँ नहीं, ऐसा असर आ जाए, इतना गहरा रंग चढ़े कई माह तक उसका असर ख़त्म ना हो, जो मस्जिद के बाहर की दुनिया में भी इसी तरह बुराइयों से अलग रहे जिस तरह वो एतिकाफ के दौरान अपने माहौल से अलग हो गया था। इसको भी हाईलाइट कर ले। अमूमन हमारे यहाँ मस्जिद के अंदर नेकी का तसव्वुर है और मस्जिद से बाहर अब हम कुछ और हैं, ऐसा नहीं करना। एतिकाफ इंसान को यक रुखा बनाता है, फोकस्ड होके तुम्हारे किसी कॉल और फेल में तजाद ना हो, कोई तुम्हें मस्जिद में देखे या मस्जिद से बाहर देखे उसको गलती ना लग जाए कि मैं किसी दूसरी शख्सियत से मिल रहा हूँ। जिस तरह वो एतिकाफ के दौरान अपने माहौल से अलग हो गया था, वो अपनी पूरी ज़िंदगी में बुराइयों से अलहदा रहने वाला इंसान बन जाए। है आपके जहन में ये कॉन्सेप्ट एतिकाफ का? हमारे यहाँ तो ये सोचते हैं कि एतिकाफ की सूरत में कोई माथे पे घट्टा पड़ जाएगा। बाज़ लोग उस शख्स को ख़ास तौर पे फंक्शनली मिलने आते हैं और फिर आके चुपके चुपके कानों में पूछते हैं, कुछ देखा था, कुछ पता चला है, कोई इशारा हुआ है? हाँ इशारा हो गया। क्या? कि अब अपनी ज़िंदगी को बदल लो, अब तुम अपने आप को एक मुख्तलिफ इंसान बनाओ, ये इशारा होता है। और इसके अलावा तो कोई इशारे कुरान और सुन्नत से नहीं मिलते कि जो एतिकाफ़ से उठने वाले को मिलते हों। रोज़े का महीना ख़त्म होने के बाद अगला दिन ईद का दिन होता है। ईद के दिन मुसलमान 2 रकत खसूसी नमाज अदा करते हैं, नए कपड़े पहनते हैं, आज़ादाना तौर पर खाते पीते हैं, दोस्तों और रिश्तेदारों से मुलाकात करते हैं, روزے کے دن اگر پابندی کے دن تھے تو عید کا دن مسلمان کے لیے آزادی کا دن ہوتا ہے. یہ علامتی طور پر دو حالتوں کا تجربہ ہے، ایک دنیا کی حالت اور دوسری آخرت کی حالت. دنیا مومن کے لیے پابندی کا دور ہے اور آخرت مومن کے لیے آزادی کا دور. رمضان کے مہینے میں اس کو یہ سبق دیا جاتا ہے کہ موجودہ دنیا میں اس کو کس طرح زندگی گزارنا ہے، اور عید کے دن جزوی طور پر اس کو یہ تجربہ کرایا جاتا ہے کہ اگلی دنیا میں اس کو کس قسم کی زندگی حاصل ہوگی. روزہ عمل کے دور کی علامت ہے اور عید انعام کے دور کی علامت ہے. کبھی ایسے سوچا تھا آپ نے کہ روزہ کیا ہے؟ اس دنیا کی زندگی ہے، یہاں ایسے جیو. سمجھ آتا ہے تو بھی ٹھیک ہے، نہیں سمجھ آتا پھر بھی مانو کیونکہ اللہ نے کہہ دیا. اور عید کیا ہے؟ یہ آخرت کے دن کی ایک چھوٹی سی جھلک. لہم فی ہما یشتاؤن، وہاں وہ سب کچھ پائیں گے جو وہ چاہتے ہیں، جو مانگیں گے. ما یدعون کے لفظ آتے ہیں، کتنا پیارا تقابل ہے نا. تو آپ دیکھیے کہ ابھی ایک اسٹریچ میں جب ہم نے ان ساری عبادات کو دیکھا تو اس سے کوئی طبیعت میں تبدیلی آئی کیا؟ اس سے آپ کے کچھ کانسیپٹ کلیئر ہوئے؟ اور کیا یہ درست انتخاب تھا کہ ہم اس کتاب کو رمضان کے ساتھ پڑھتے؟ اپنے آپ کو چیک کیجئے، اللہ تعالیٰ نے کتنی پیاری نعمت ہمیں دی. ہم نے ایک ایسا اینگل دیکھا عبادات کا جو عموماً خزف ہے. رمضان نام ہے پابندیوں کا اور عید نام ہے پابندیوں سے آزاد ہونے کا. جی الحمدللہ، یہ کہتی ہیں کہ کافی نئی باتیں معلوم ہوئیں. تہجد اور تراوی کا کانسیپٹ کلیئر ہوا، الحمدللہ. تو ٹھیک ہے، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.